पहला कुरिन्थियों अध्याय 14। प्रेम के मार्ग पर प्रयत्नशील रहो और आध्यात्मिक वरदानों की निष्ठा के साथ अभिलाषा करो, विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से बोलने की, क्योंकि जिसे दूसरे की भाषा में बोलने का वरदान मिला है वह तो वास्तव में लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पाता, वह तो आत्मा की शक्ति से रहस्यमय वाणी बोल रहा है। किंतु वह जिसे परमेश्वर की ओर से बोलने का वरदान प्राप्त है वह लोगों से उन्हें आत्मा में दृढ़ता, प्रोत्साहन और चैन पहुंचाने के लिए बोल रहा है। जिसे विभिन्न भाषाओं में बोलने का वरदान प्राप्त है वह तो बस अपनी आत्मा को ही सुदृढ़ करता है, किंतु जिसे परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य मिला है वह समूची कलीसिया को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सभी दूसरी अनेक भाषाएं बोलो, किंतु इससे भी अधिक मैं यह चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर की ओर से बोल सको, क्योंकि कलीसिया की आध्यात्मिक सुदृढ़ता के लिए अपने कहे की व्याख्या करने वाले को छोड़कर दूसरी भाषाएं बोलने वाले से परमेश्वर की ओर से बोलने वाला बड़ा है। हे भाइयों, यदि दूसरी भाषाओं में बोलते हुए मैं तुम्हारे पास आऊं तो इससे तुम्हारा क्या भला होगा, जब तक कि तुम्हारे लिए मैं कोई रहस्य उद्घाटन, दिव्य ज्ञान, परमेश्वर का संदेश या कोई उपदेश न दूं। यह बोलना तो ऐसे ही होगा जैसे किसी बांसुरी या सारंगी जैसे निर्जीव वाद्य की ध्वनि। यदि किसी वाद्य के स्वरों में परस्पर स्पष्ट अंतर नहीं होता तो कोई कैसे पता लगा पाएगा कि बांसुरी या सारंगी पर कौन सी धुन बजाई जा रही है, और यदि बिगुल से अस्पष्ट ध्वनि निकलने लगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार कौन होगा। इसी प्रकार किसी दूसरे की भाषा में जब तक कि तुम साफ साफ न बोलो तब तक कोई कैसे समझ पाएगा कि तुमने क्या कहा है, क्योंकि ऐसे में तुम तो बस हवा में बोलने वाले ही रह जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार में भांति भांति की बोलियां हैं और उनमें से कोई भी निरर्थक नहीं है। सो जब तक मैं उस भाषा का जानकार नहीं हूँ तब तक बोलने वाले के लिए मैं एक अजनबी ही रहूँगा और वह बोलने वाला मेरे लिए भी अजनबी ही ठहरेगा। तुम पर भी यही बात लागू होती है, क्योंकि तुम आध्यात्मिक वरदानों को पाने के लिए उत्सुक हो, इसलिए उनमें भरपूर होने का प्रयत्न करो जिससे कलीसिया को आध्यात्मिक सुदृढ़ता प्राप्त हो। परिणाम स्वरूप जो दूसरी भाषा में बोलता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपने कहे का अर्थ भी बता सके, क्योंकि यदि मैं किसी अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना कर रही होती है किंतु मेरी बुद्धि व्यर्थ रहती है। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से तो प्रार्थना करूंगा ही, किंतु साथ ही अपनी बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। अपनी आत्मा से तो उसकी स्तुति करूंगा ही, किंतु अपनी बुद्धि से भी उसकी स्तुति करूंगा। क्योंकि यदि तू केवल अपनी आत्मा से ही कोई आशीर्वाद दे तो वहाँ बैठा कोई व्यक्ति जो बस सुन रहा है तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि तू जो कह रहा है उसे वह जानता ही नहीं। अब देख, तू जो चाहे भली भांति धन्यवाद दे रहा है किंतु दूसरे व्यक्ति की तो उससे कोई आध्यात्मिक सुदृढ़ता नहीं होती। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुम सबसे बढ़कर विभिन्न भाषाएं बोल सकता हूँ, किंतु कलीसिया सभा के बीच किसी दूसरी भाषा में दसियों हजार शब्द बोलने की अपेक्षा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बस 5 शब्द बोलना अच्छा समझता हूँ, ताकि दूसरों को भी शिक्षा दे सकूँ। हे भाइयों, अपने विचारों में बचकाने मत रहो बल्कि बुराइयों के विषय में अबोध बच्चे जैसे बने रहो, किंतु अपने चिंतन में सयाने बनो, जैसा कि शास्त्र कहता है,
उनका उपयोग करते हुए जो अन्य बोली बोलते हैं, उनके मुखों का उपयोग करते हुए जो पराए हैं, मैं इनसे बात करूंगा पर तब भी ये मेरी न सुनेंगे।
प्रभु ऐसा ही कहता है। सो दूसरी भाषाएं बोलने का वरदान अविश्वासियों के लिए संकेत है, न कि विश्वासियों के लिए, जबकि परमेश्वर की ओर से बोलना अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। सो यदि समूचा कलीसिया एकत्र हो और हर कोई दूसरी दूसरी भाषाओं में बोल रहा हो, तभी बाहर के लोग या अविश्वासी भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? किंतु यदि हर कोई परमेश्वर की ओर से बोल रहा हो और तब तक कुछ अविश्वासी या बाहर के आ जाएं, तो क्या सब लोग उसे उसके पापों का बोध नहीं करा देंगे? सब लोग जो कह रहे हैं उसी पर उसका न्याय होगा। जब उसके मन के भीतर छिपे भेद खुल जाएंगे, तब तक वह यह कहते हुए सचमुच तुम्हारे बीच परमेश्वर है दंडवत प्रणाम करके परमेश्वर की उपासना करेगा। हे भाइयों, तो फिर क्या करना चाहिए? तुम जब इकट्ठे होते हो तो तुम में से कोई भजन, कोई उपदेश और कोई आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करता है, कोई किसी अन्य भाषा में बोलता है तो कोई उसकी व्याख्या करता है। ये सब बातें कलीसिया की आत्मिक सुदृढ़ता के लिए की जानी चाहिए। यदि किसी अन्य भाषा में बोलना है तो अधिक से अधिक दो या तीन को ही बोलना चाहिए, बारी बारी एक एक करके, और जो कुछ कहा गया है एक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। यदि वहाँ व्याख्या करने वाला कोई न हो तो बोलने वाले को चाहिए कि वह सभा में चुप ही रहे और फिर उसे अपने आप से और परमेश्वर से ही बातें करनी चाहिए। परमेश्वर की ओर से उसके दूत के रूप में बोलने का जिन्हें वरदान मिला है, ऐसे दो या तीन व्यक्तियों को ही बोलना चाहिए और दूसरों को चाहिए कि जो कुछ उन्होंने कहा है वे उसे परखते रहें। यदि वहाँ किसी बैठे हुए पर किसी बात का रहस्य उद्घाटन होता है तो परमेश्वर की ओर से बोल रहे पहले वक्ता को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक एक करके परमेश्वर की ओर से बोल सकते हो ताकि सभी लोग सीखें और प्रोत्साहित हों। नबियों की आत्माएं नबियों के वश में रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था नहीं शांति देता है, जैसा कि संतों की सभी कलीसियाओं में होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे सभाओं में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, बल्कि जैसा कि व्यवस्था के विधान में भी कहा गया है उन्हें दब कर रहना चाहिए। यदि वे कुछ जानना चाहती हैं तो उन्हें घर पर अपने अपने पति से पूछना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह सभा में बोले। क्या परमेश्वर का वचन तुमसे उत्पन्न हुआ या वह मात्र तुम तक पहुंचा? निश्चित ही नहीं। यदि कोई सोचता है कि वह नबी है अथवा उसे आध्यात्मिक वरदान प्राप्त है, तो उसे पहचान लेना चाहिए कि मैं तुम्हें जो कुछ लिख रहा हूँ वह प्रभु का आदेश है। सो यदि कोई इसे नहीं पहचान पाता तो उसे भी नहीं पहचाना जाएगा। इसलिए हे मेरे भाइयों, परमेश्वर की ओर से बोलने को तत्पर रहो तथा दूसरी भाषाओं में बोलने वाले को भी मत रोको, किंतु ये सभी बातें सही ढंग से और व्यवस्था अनुसार की जानी चाहिए।